हे परमपिता परमात्मा, हम अधिक रचनात्मक हो सकें और अनंत प्रेम में पड़ सकें, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए, ऐसी भक्ति हमें दीजिए। ओम तत्सत, परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही। परमपिता परमात्मा का स्मरण करने के बाद अब हम जो बुक कर रहे हैं सेल्फ थ्योरीज, उसी के ऊपर वापस आते हैं। और इस बुक में अब तक हमने फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल थ्योरी, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, और दूसरा परफॉर्मेंस गोल्स एंड लर्निंग गोल्स के बारे में भी बात कर ली। परफॉर्मेंस गोल्स कौन से होते हैं? जब हम एंड रिजल्ट की बात करते हैं। लर्निंग गोल्स होते हैं जब हम प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोसेस में परफेक्शन की बात करते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की बात है, जब हम परफॉर्मेंस गोल्स सेटअप करते हैं तो हम कहते हैं मैं ये हासिल करना चाहता हूँ, और जबकि हम लर्निंग गोल्स की बात करते हैं तो हम उस प्रक्रिया की बात करते हैं कैसे हासिल होगा, उसमें जो रास्ता है, वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमको कितना अच्छा बना सकते हैं, उसको हम और अच्छा कैसे बना सकते हैं, और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट गोज। तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, तीसरे कॉन्सेप्ट को इस पुस्तक से हम ले रहे हैं। ये तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? ये है एट्रीब्यूशन रीट्रेनिंग। अब ये एट्रीब्यूशन रीट्रेनिंग क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जब हम कोई भी काम करते हैं, परफॉर्मेंस मतलब या कोई भी लक्ष्य के लिए हम जब ट्राई करते हैं, तो फेल्योर जो है वो एक बहुत ही स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। असफलता जो है इस पूरे प्रक्रिया में बहुत 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 स्वाभाविक है, इजंट इट? तो हाउ वी कैन हैंडल दैट स्टफ, कैसे हम कुछ कर रहे हैं और करने की प्रक्रिया में, बच्चों को भी होता है, बच्चे बहुत बहुत बार कुछ करना चाहते हैं और उनको एक्सपीरियंस होता है कि भाई ये तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है। तो वो जो बच्चों का ये जो एट्रीब्यूशन रिटेनिंग है, एक तरह का ऐसा कहना चाहिए साइकोलॉजिकल टेक्निक है। और इस टेक्निक से हम बच्चों को क्या सिखाते हैं कि भाई उनका जो असफलता के साथ डील करना है, उनका जो सफलता के साथ डील करना है, उसको कैसे जाना चाहिए, उसको हम कैसे उनके माइंडसेट में किस तरह के बदलाव आने चाहिए, उनके मोटिवेशन में किस तरह के इम्प्रूवमेंट आने चाहिए, उनके परफॉर्मेंस में किस तरह का निखार आना चाहिए। तो ये जो एट्रीब्यूशन रिटेनिंग है, इसके कुछ एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जिनके बारे में हम आज के सत्र में थोड़ी सी बात करेंगे, और कैसे कैसे बच्चों में इसको एस्टेब्लिश करने के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, और इसको काम करेंगे तो क्या होगा कि बच्चों का जो मोटिवेशन है दैट विल इंक्रीज, देर जो बच्चों का जो रेजिलियंस है फेल्योर के लिए, कि फेल होने के बाद वो कितना क्विकली बाउंस बैक करेंगे, उस पर फ़ायदा होगा, कैसे इम्प्रूव करेंगे बच्चे अपनी परफॉर्मेंस को, उसके बारे में उनको क्लैरिटी होगी, एंड डेफिनेटली ग्रोथ माइंडसेट उनका जो है वो डेवलप करेगा। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को, एट्रीब्यूशन रिट्रेनिंग को, अपन आज थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको थोड़ा इसकी बेसिक थ्योरी क्या है, एट्रीब्यूशन रिट्रेनिंग का मतलब इसको कोर में जाके अगर हम समझें तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई घटना घटती है, जब भी कोई इवेंट होती है, जीवन में हमको सफलता मिलती है, जीवन में हमको असफलता मिलती है, कोई घटना घटती है, तो उस घटना के घटने पर हम उसका कुछ कारण ढूंढते हैं, हम उसको कहते हैं कि ये ऐसा इसलिए हुआ। तो वो जो हमारा इंटरप्रिटेशन है और वो उस घटना को जो हमने एक कॉज असाइन किया, दिस इज़ व्हाई दिस हैपेंड। जैसे किसी बच्चे को मैथ्स में कम मार्क्स आए, अब मैथ्स में कम मार्क्स आए तो बच्चा कैसे रिएक्ट कर सकता है? एक तरीका क्या हो सकता है, वो रिएक्ट कर सकता है मैं मैथ्स में बहुत ख़राब हूँ, मैथ्स मेरे बस की बात नहीं है, इस वजह से मेरे मैथ्स के मार्क्स ख़राब आए, ये उसने उस इवेंट का एक कॉज ढूंढ लिया। अब क्या हुआ, ज़िंदगी भर के लिए उस बच्चे ने मैथ के लिए अपने रास्ते बंद कर दिए। एक कॉज क्या हो सकता है, मेरे मैथ्स में मार्क्स ख़राब आए, लेकिन उसका जो उस घटना का जो इंटरप्रिटेशन है इस बच्चे ने, वो क्या किया, मैं ना थोड़ा सा एग्ज़ाम से पहले मैथ पे फोकस नहीं कर पाया और मेरे कुछ चैप्टर्स थे जिनका मैं रिवीजन नहीं कर पाया, अगली बार मैं बहुत अच्छे से रिवीजन करूँगा और जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको टाइम रहते ही मैं टीचर के साथ डिस्कस कर लूँगा। अब क्या हुआ, सेम इवेंट दो बच्चों के जीवन में घटित हुआ, लेकिन उनका जो एट्रीब्यूशन है, उनका जो उसका जो कंक्लूजन उन्होंने ड्रॉ किया, जो कॉज उन्होंने ड्रॉ किया, दैट वॉज डिफरेंट। एक तीसरा बच्चा हो सकता है, वो उसके भी मैथ्स में मार्क्स ख़राब आए, और जब उसके भी मैथ्स में मार्क्स ख़राब आए तो उस बच्चे ने उसको कैसे कनेक्ट किया, उन्होंने कहा मैं तो अनलक्की हूँ, मैं तो ना सारे एग्ज़ाम्स में ही मार्क्स ख़राब आते हैं। ओ भगवान, तो आप समझ रहे होंगे दैट इज़ दैट लाइफ में हम सबके जीवन में बहुत सी सेम सेम घटनाएं घटती हैं, लेकिन घटना घटना एक बात है, लेकिन उस घटना का इंटरप्रिटेशन हम क्या करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। वो जो उसका इंटरप्रिटेशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे हम कैसे बढ़ने वाले हैं। अगर हमने इंटरप्रिटेशन गड़बड़ रखा, अगर इंटरप्रिटेशन ये रखा मैं तो मैथ्स में हूँ ही ख़राब, तो हम किसको किसको प्रमोट कर रहे हैं। इस एट्रीब्यूशन रिट्रेनिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने उस कंक्लूजन को, बच्चे जो कंक्लूड करते हैं घटनाओं को, उसको हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो जो बच्चा इस तरह से कंक्लूड कर रहा है कि मैं तो मैथ्स में हूँ ही ख़राब, वो अपना किस तरह का माइंडसेट बना रहा है, वो फिक्स माइंडसेट बना रहा है। आपको बात समझ में आ गई होगी। और जो बच्चा ये कह रहा है कि कोई बात नहीं इसमें ख़राब आए मार्क्स, कोई बात नहीं मैं अगले एग्ज़ाम में देख लूँगा, मेरी ये चार गलतियाँ रही, ये गलतियों को मैं रिपीट करने वाला नहीं हूँ, तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। टिपिकली जब भी कोई घटना घटती है उस घटना को हम लोग जो है, जब एट्रीब्यूशन रिट्रेनिंग की डिटेल में बात करें, थोड़ी डेप्थ में जाके इसको समझने की कोशिश करें, तो तीन तरह से के मतलब कैटेगराइज कर सकते हैं अपन एट्रीब्यूशंस को, तीन तरह से। कैसे तीन तरह से कर सकते हैं, पहला इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, कि बच्चा ये देख सकता है मैथ्स में मार्क्स ख़राब आए तो इसका इंटरनल रीज़न क्या रहा, मेरी तैयारी ठीक नहीं थी, एक तो ये रीज़न हो सकता है, या मेरी एबिलिटी नहीं है, ये भी रीज़न हो सकता है। एक्सटर्नल में आउटसाइड में क्या हो सकता है, टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया, मैं ना तैयारी नहीं कर पाया, कुछ इस तरह के डिस्टर्बेंसेस हो गए थे, या मैं तो अनलक्की हूँ। लो, ये बच्चे ने अपने आप को इस तरह से भी इंटरप्रेट कर दिया। तो सबसे पहले हमको बच्चों को ये समझाना, ये एट्रीब्यूशन रिट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत बार बच्चे जो हैं जीवन में, जो जितने भी डिप्रेशन के केसेस होते हैं, जितने भी सुसाइडल केसेस होते हैं, सब में बच्चे के जो कंक्लूजन्स जो वो ड्रॉ करते हैं घटनाओं से, वो ठीक नहीं होते, वो गड़बड़ होते हैं। तो पहला तो इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, वो उनका किस तरह का उनका हुआ एट्रीब्यूट, कैसे उन्होंने एट्रीब्यूट किया उसको। दूसरा स्टेबल और अनस्टेबल, जो कॉज है वो कॉज जो है वो, जैसे हम अनस्टेबल, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी तैयारी ठीक नहीं हुई थी टेस्ट की, इस वजह से जो है मुझे मार्क्स कम मिले, तो ठीक है, ये तो ओके, देर इज़ नो प्रॉब्लम, अगली बार तैयारी ठीक करेंगे, ठीक हो जाएगा, ये कोई बहुत ही स्टेबल रीज़न नहीं है। तो स्टेबल का मतलब क्या है कि दूसरा बच्चा क्या कह रहा है, मैं तो मैथ्स में हूँ ही ख़राब, ना तुम तो अपने साथ ही रहोगे हमेशा, एंड यू विल बी लाइक दैट फॉर, तो वो स्टेबल बोलते ही सारा चीज़ें अलग तरीके से रिएक्ट होगा। फिर तीसरी बात क्या है, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। अगर किसी ने कहा कि आई एम अनलक्की, तो अब मैं अपने अनलक को तो भैया कंट्रोल नहीं कर सकता, दैट इज़ नॉट इन माई हैंड, तो आई जस्ट विक्टमाइज माई सेल्फ। कंट्रोलेबल है, अच्छा मुझे ही तैयारी करनी है क्या, मुझे सवाल पूछने हैं, मुझे थोड़ी अच्छा एफर्ट डालना है, ओह दैट्स गुड, दैट्स इट, नॉट अ बिग डील, आई डू इट। तो दिस इज़ हाउ वी गो विद इट। तो तीन तरह की इसमें एट्रीब्यूशन रिटर्निंग में तीन तरह से हम बच्चों को ट्रेन करते हैं। तीनों चीज़ें हमको ठीक से समझनी चाहिए। मुझे तो लगता है ये सब चीज़ें पेरेंट के साथ साथ ना टीचर्स को, हर एक टीचर को इसकी डीप ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को ठीक से संभाल सके। तो ये हुई पहली बात, जो एट्रीब्यूशन की बेसिक जो बात है वो मैंने आपको बताई। फिर बहुत बार मॉल अडेप्टिव एट्रीब्यूशंस को जब अपन देखते हैं कि बच्चा फेल हुआ, तो फेल हुआ तो उसने क्या किया कि सारा का सारा जो है फेल हुआ, तो तीन चीज़ें एक साथ आ गई, इंटरनल मैं दोषी हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, स्टेबल जब मैं किसी लायक नहीं हूँ तो फिर बात ही खत्म हो गई, वो और वो स्टेबल भी है और अनकंट्रोलेबल है, मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, तो ऐसा जो है स्थिति जो होती है वो फिक्स माइंडसेट को बढ़ाती है और हेल्पलेसनेस आ जाती है, रिड्यूस बच्चे के जो एफर्ट्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और डेफिनेटली दिक्कत होगी। और कई बार क्या होता है कि सक्सेस में भी ऐसा होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, कई बार लगता है मैं तो लकी हूँ इसलिए ऐसा हो गया, एक्सटर्नल अनस्टेबल, तो ये भी जो है वो जो सेंस ऑफ कंट्रोल है उसको गड़बड़ा देते हैं। तो रिट्रेनिंग क्यों करना चाहते हैं? रिट्रेनिंग इसलिए करना चाहते हैं कि हम शिफ्ट करना चाहते हैं एट्रीब्यूशंस को, कि एट्रीब्यूशंस कंट्रोलेबल हैं, इंटरनल हैं, अनस्टेबल हैं, फिर चीज़ें जो हैं आसान हो जाएंगी। क्योंकि अगर सफलता के लिए भी हमने मान लिया ना, अरे मैं तो एक सफल इंसान हूँ, मैं तो हमेशा ही सफल रहूँगा, देन देर इज़ अ प्रॉब्लम। तो एट्रीब्यूशंस हमेशा कंट्रोलेबल, इंटरनल अनस्टेबल, ये अगर हम इसको पकड़ लें सारे एट्रीब्यूशंस में, ये तीनों चीज़ें हमको दिख जाएं, तो देन ग्रोथ माइंडसेट, देन देन उसको लाइफ को ना बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम एट्रीब्यूशन रिटेनिंग करें कैसे बच्चों की, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब भी बच्चे घटनाओं को देखते हैं हमको उनसे पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ऐसा ख़राब मार्क्स क्यों आए, या ये चीज़ में आपको असफलता मिली तो क्यों मिली, इस चीज़ में आप सफल हुए तो आप वो सफलता आपको क्यों मिली, वो जो हमारा डिस्कशन है उस डिस्कशन के बेसिस पर हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि मतलब बच्चे का जो एट्रीब्यूशन है वो कैसा है। और फिर उसकी रीट्रेनिंग के लिए पहली चीज़ उसके रिस्पॉन्सेस को समझें, उसके साथ बात करें, दूसरा हम उसको फीडबैक दे सकते हैं कि देखो ये नहीं इसका कारण ये हो सकता है, इफ़ नेक्स्ट टाइम यू फोकस मोर ऑन योर स्टडीज़ यू कैन डेफिनेटली इम्प्रूव इन एनी ऑफ द एरिया। मॉडलिंग भी इसमें एक टेक्निक होती है जहाँ हम बच्चों को जो सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स होते हैं उनके उनके बारे में बताते हैं, उनके बारे में उनको समझाते हैं और उनके लाइफ के अप एंड डाउन्स, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को किया, तो दैट कुड बी वन मोर एरिया। और जितना हम बच्चों को एनकरेज करेंगे कंट्रोलेबिलिटी के लिए कि देखो तुम अपने जीवन के करीब करीब हर क्षेत्र पर तुम्हारा नियंत्रण है, कंट्रोल है, और उसको अगर हम हाईलाइट करेंगे तो धीरे 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 बच्चे जो हैं पॉजिटिविटी की तरफ आने लगते हैं। तो ये आज के इस सत्र में थोड़ा सा मैंने पकड़ने की कोशिश की एक खास कॉन्सेप्ट को, एट्रीब्यूशन रीट्रेनिंग को, और बच्चों के साथ ये क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे इसका एक महत्वपूर्ण जीवन में रोल है। आई होप आप सबके मन में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हो तो डेफिनेटली वी कैन टेक इट। कल हम एक नया जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, कंटिजेंट सेल्फ वर्थ, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस बुक का, तो कल हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, तीन कॉन्सेप्ट अभी और मैंने चुने हैं इस किताब से जिनके बारे में अपने को बात करनी है। आज के लिए इतना ही। ओम तत्सत, परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही।